एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, ग्रंथ सार में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास शुरुआत करने वाले हैं। जैस्मिन वार्ड का लेट अस डिसेंट, अक्टूबर 2023 में आया था यह।
जी, जैस्मिन वार्ड मतलब समकालीन अमेरिकी साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है, खासकर जो अमेरिकी साउथ की अश्वेत जिंदगियां हैं उनका सच।
हाँ, और वो पहली महिला और पहली अश्वेत अमेरिकन है जिन्हें 2 बार नेशनल बुक अवार्ड मिला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल, और उनकी लेखनी उसमें एक खास बात है, भाषा बहुत काव्यात्मक है, सुंदर है, लेकिन जो सच्चाई वो दिखाती हैं वो अक्सर दहला देने वाली होती हैं।
सही कहा, मतलब लोक कथा, मिथक, आध्यात्मिक का सब कुछ घुला मिला सा लगता है उनके काम में।
जी हाँ,
और लेट अस डिसेंड इसीलिए और भी खास है क्योंकि ये उनका पहला पूरा ऐतिहासिक उपन्यास है। एंटेबेलम साउथ में सेट है, यानी अमेरिका का वो दौर जब गृह युद्ध नहीं हुआ था और दास प्रथा।
उफ, हाँ, वो भयावह दौर। लेकिन ये सिर्फ इतिहास नहीं है, जैसा आपने कहा, इसमें वो आध्यात्मिक और मिथकीय परतें भी हैं।
बिल्कुल, खास तौर पर जो दांते की इन्फर्नो है, नरक यात्रा, उसकी गूंज तो साफ सुनाई देती है, जैसे वो गन्ने के बागान, वो नरक के अलग अलग घेरे हों।
सही, ये विषय ही ऐसा है, मतलब दास्ता की उस भयावहता को महसूस करना आसान नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए आज हम कोशिश करेंगे कि इस उपन्यास की जो अलग अलग परतें हैं उन्हें थोड़ा खोलें। एनिस जो मुख्य पात्र है, उसकी यात्रा को समझें, उसके उतार चढ़ाव, उसका संघर्ष, उसका बदलाव।
जी,
और जो मुख्य विषय हैं, जैसे विरासत, आज़ादी का मतलब क्या है, प्रेम, प्रतिरोध, इन सब पर बात करेंगे। और हाँ, वार्ड की जो खास लिखने की शैली है उस पर भी।
जरूर।
तो चलिए एनिस की कहानी में उतरते हैं। कहाँ से शुरू होती है कहानी?
कहानी शुरू होती है कैरोलाइना के चावल बागान से। उपन्यास इसे ज्ञात दुनिया कहता है। यहीं हम एनिस से मिलते हैं। एक जवान लड़की अपनी माँ के साथ रह रही है, और उसकी माँ, वो सिर्फ माँ नहीं है, वो उसकी गुरु है।
अच्छा,
हाँ, वो अफ्रीकी मूल की है, डाहूमी की योद्धा परंपरा से। पश्चिम अफ्रीका की वो मशहूर महिला योद्धाएं थी ना,
हाँ, सुना है उनके बारे में।
तो वो एनिस को सिर्फ चावल उगाना नहीं सिखाती, लड़ना सिखाती हैं, प्रकृति को समझना, जड़ी बूटियां पहचानना, और सबसे जरूरी, आत्माओं की दुनिया से जुड़ना। यही एनिस की असली विरासत है, उसकी ढाल एक तरह से।
ये जो मातृवंशीय विरासत वाली बात है, ये बहुत अहम है। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां से इंसान नहीं सिर्फ सामान समझा जाता है,
जी,
वहां माँ से मिली ये शिक्षा, ये सिर्फ हुनर नहीं, ये तो उसकी पहचान है, उसकी गरिमा है, उसको जिंदा रखने का तरीका है। वो जड़ें हैं जो उसे थामे रखती हैं।
बिल्कुल सही कहा। और इसी दुनिया में एक और रिश्ता है उसका, जो बहुत पेचीदा है, सब्बास।
सब्बास?
हाँ, बागान का मालिक और एनिस का पिता भी।
हो हो,
और ये रिश्ता कोई प्यार का नहीं है, ये ताकत का, नियंत्रण का और खतरे का रिश्ता है। सब्बास की एक गोरी पत्नी भी है, तो वहां भी एक तनाव है।
समझ रहे हो, ये व्यक्तिगत रिश्ते और वो पूरी दास्ता की जो क्रूर व्यवस्था है, ये कैसे उलझते हैं आप?
होता यह कि एक दिन एनिस गुस्से में या शायद ईर्ष्या में सब्बास की पत्नी के सामने कुछ ऐसा कह देती है जो सब्बास को लगता है कि उसके मालिकाना हक को चुनौती है।
अच्छा,
बस उसका गुस्सा भड़क जाता है और वो फौरन फैसला करता है एनिस को बेच देगा।
अपनी ही बेटी को?
हाँ, और इसके बाद जो होता है बहुत ही दर्दनाक है। एनिस को उसकी माँ से जबरदस्ती, बेरहमी से अलग किया जाता है। वो चीखती है, लड़ती है, पर उसे खींच कर ले जाते हैं। माँ से ये जुदाई, ये उसकी जिंदगी का पहला बड़ा सदमा है। यहीं से वो एक अनजाने डर की तरफ धकेल दी जाती है।
सब्बास का ये काम, ये सिर्फ एक बाप की क्रूरता नहीं लगती, ये उस पूरी व्यवस्था का पाखंड दिखाता है जहां इंसान अपनी औलाद को भी बेच सकता है।
सही कहा।
एरिस के लिए ये सिर्फ माँ से दूर होना नहीं है, ये उसके भरोसे पर, उसकी पहचान पर चोट है। शायद यहीं से उसका वो अवरोहण, वो नीचे गिरना शुरू होता है जिसका जिक्र दांते के यहाँ है।
हाँ बिल्कुल, उपन्यास का दूसरा भाग इसी अवरोहण पर है, कौफल का मार्च।
कौफल?
हाँ, कौफल मतलब जंजीरों में जकड़े गुलामों के कतार। एनिस को ऐसी ही एक कतार में बांधकर दक्षिण के दास बाजारों की तरफ पैदल ले जाया जाता है।
पैदल?
मीलों लंबी यात्रा, दर्द, थकान, अपमान, भूख, प्यास, चाबुक की मार, ये सब रोज की बात है। नाम छीन लिए जाते हैं, नंबरों से पुकारते हैं, जैसे जानवर हो, पहचान मिटाने की पूरी कोशिश।
ये शारीरिक यात्रा तो भयानक है ही, पर उसके अंदर क्या चल रहा होता है, ये एक तरह की आध्यात्मिक यात्रा भी बन जाती है ना?
हाँ बिल्कुल। इसी दर्द और निराशा के बीच एनिस को अपने अंदर कुछ महसूस होने लगता है, एक आवाज, एक साया जो धीरे धीरे साफ होता जाता है।
कोई? कौन?
ये एक पैतृक आत्मा है, वो उसे आजा कहती है, आजा। बाद में पता चलता है शायद उसका नाम एनाबेल था, कोई पूर्वज।
अच्छा।
ये आजा उसे माँ की बातें याद दिलाती है, डाहुमी की कहानियां सुनाती है, अतीत की झलकियां दिखाती है, पर वो कोई शांत प्यारी सी आत्मा नहीं है।
हाँ, यहाँ आजा को समझना जरूरी है, लगता है वो कोई पारंपरिक देवी या रक्षक जैसी नहीं है।
नहीं बिल्कुल नहीं, वो मांग करती है, जिद्दी है, कभी कभी तो क्रूर भी लगती है। वो एनिस की जो गहरी भावनाएं है ना, गुस्सा, दुख, निराशा, उनसे ताकत लेती है,
उसके दर्द से।
हाँ, उसके दर्द से जीती है, लेकिन बदले में उसे एक अलग तरह की दृष्टि देती है, अंदरूनी ताकत देती है, अपनी जड़ों से जोड़ती है। वो जैसे पीढ़ियों का जमा हुआ दर्द और गुस्सा है, उसका रूप है, लेकिन उसमें बदलाव की, मुक्ति की ताकत भी है। एनिस और आजा का ये जो रिश्ता है, ये उपन्यास का आध्यात्मिक दिल है, कह सकते हैं।
बहुत गहरा।
ये यात्रा उन्हें न्यू ऑर्लीन्स शहर ले आती है। उपन्यास का तीसरा भाग, नरक में एक झलक।
न्यू ऑर्लियंस
शहर तो वैसे बड़ा रंगीन है, संगीत है, चहल पहल है, लेकिन एनिस जैसों के लिए ये बस एक मंडी है, इंसानों की मंडी। उन्हें दास बाड़ों में रखा जाता है, जहां खरीदार आते हैं, जानवरों की तरह जांचते परखते हैं, दांत देखते हैं, मांसपेशियां देखते हैं, मतलब इंसानियत को पूरी तरह नकार देने वाला माहौल।
इस माहौल में भी क्या कोई उम्मीद की किरण दिखती है, कोई इंसानियत?
हाँ दिखती है। वहीं उस घुटन और निराशा के बीच एनिस की मुलाकात सैफी नाम के एक और लड़की से होती है।
सैफी
जी, और दोनों के बीच एक बहुत गहरा, बहुत भावुक प्रेम संबंध बन जाता है।
सच में उस जगह पर?
हाँ, उनका प्यार उस अंधेरे में एक दिए जैसा है। ये सिर्फ जिस्मानी खिंचाव नहीं है, वो एक दूसरे की आत्मा को पहचानते हैं, दर्द को समझते हैं, और ये उस क्रूर व्यवस्था के खिलाफ उनका खामोश विद्रोह भी है।
वाह।
एक ऐसी व्यवस्था जो उन्हें प्यार करने से रोकती है, उसमें प्यार करना ये अपने आप में एक बगावत है।
हाँ, ये प्रेम और मानवीय जुड़ाव का प्रतिरोध बनना, ये वार्ड के लेखन की खासियत लगती है। दिखाता है कि कैसे सबसे मुश्किल हालात में भी इंसानियत जिंदा रहती है, कैसे कोमलता भी ताकत बन सकती है। सैफी का आना एनिस के लिए बहुत मायने रखता होगा।
बहुत, उसे जीने की एक वजह मिलती है, लेकिन ये खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकती।
ओहो।
नीलामी होती है और दोनों को अलग अलग लोग खरीद लेते हैं। एनिस को फील्ड्स नाम का एक आदमी खरीदता है, बहुत क्रूर। वो उसे लुइजियाना के चीनी बागानों के लिए ले जाता है।
चीनी बागान? सुना है बहुत खराब हालात थे वहां।
बहुत ज्यादा। सैफी से ये बिछड़ना एनिस के लिए माँ से बिछड़ने जैसा ही एक और बड़ा सदमा है। वो दुख और अकेलेपन के और गहरे कुएं में गिर जाती है।
और यहीं से उपन्यास के सबसे काले हिस्से की शुरुआत होती है, चौथा भाग, इन्फर्नो, साक्षात नरक।
बिल्कुल, लुइजियाना का वो चीनी बागान, वो सचमुच नरक ही है। जैस्मिन वार्डनी जैसा वर्णन किया है, गन्ने की कटाई, चीनी बनाने की प्रक्रिया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं पढ़कर।
कैसा, मतलब क्या होता था वहां?
कमर तोड़ मेहनत, उबलती भट्टियों के पास झुलसा देने वाली गर्मी, मच्छर, सांप, और ऊपर से ओवरसियरों की लगातार नजर और बेरहमी, मारपिटाई। वो पूरा माहौल ही ऐसा बनाया गया था कि इंसान का जिस्म और रूह दोनों टूट जाए। एनिस के लिए ये उसके निजी नरक का सबसे निचला, सबसे अंधेरा कोना है।
यहाँ वो दांते का इन्फर्नो वाला रूपक एकदम साफ दिखता है। वार्ड दास्ता को सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पतन, एक अमेरिकी नरक की तरह दिखा रही है।
जी हाँ।
और ये जो फील्ड्स हैं मालिक, वो सब्बास से अलग हैं।
हाँ, बहुत अलग। सब्बास में फिर भी कुछ व्यक्तिगत भावनाएं थीं, भले ही वो क्रूर थीं। फील्ड्स, वो जैसे उस व्यवस्था का चेहरा है, अव्यक्तिक क्रूरता। उसका बस एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, चाहे उसके लिए इंसानों को मशीन की तरह क्यों ना पीसना पड़े। वो लाभ के पीछे भागती एक अंधी, बेरहम ताकत जैसा है।
इस जानलेवा माहौल में एनिस की क्या हालत होती?
वो धीरे धीरे उम्मीद खोने लगती है, माँ की बातें याद नहीं रहती, सैफी का प्यार बस एक सपना लगता है, निराशा उस पर हावी होने लगती है।
और आजा, उस आत्मा का क्या होता है?
आजा के साथ उसका रिश्ता और भी उलझ जाता है और तीव्र हो जाता है। आजा इस गहरी निराशा से और ताकतवर होती जाती है, एक डरावनी जला देने वाली उपस्थिति बन जाती है। एनिस उससे लड़ती है, डरती है। उसे लगता है अगर उसने आजा के इस गुस्से को अपना लिया तो वो खुद ही खत्म हो जाएगी, अपनी पहचान खो देगी।
ये तो बहुत बड़ा आंतरिक संघर्ष है। क्या निराशा में डूब जाना है या उस विरासत की भयानक ताकत को गले लगाना है? क्या अपने दर्द को मानना मतलब खुद को खोना है या पाना?
यही कश्मकश है।
क्या इस नरक से निकलने का कोई रास्ता मिलता है उसे?
हाँ, रास्ता है, लेकिन वो पारंपरिक रास्ता नहीं है। उपन्यास का पांचवा और आखिरी भाग है पुनः आरोहण, रीअसेंट। कहानी का क्लाइमैक्स एक जबरदस्त तूफान के रूप में आता है, एक प्रलय जैसा तूफान जो पूरे बागान को तबाह कर देता है।
तूफान, ये सिर्फ मौसम की घटना है या इसका कोई और मतलब है?
नहीं, ये सिर्फ मौसम नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। ये प्रकृति का गुस्सा है, शायद ईश्वर का बदला। ये तबाही लाता है, लेकिन ये सफाई भी करता है, शुद्धिकरण। ये एनिस के अंदर जो तूफान चल रहा है उसका बाहरी रूप है, और यही वो आग है जिसमें उसका पुराना रूप जलता है और नया जन्म लेता है।
अच्छा, तो तूफान के दौरान क्या होता है?
तूफान के बीचों बीच जब चारों तरफ मौत मंडरा रही होती है, एनिस और आजा का आखिरी सामना होता है। एनिस एक झोपड़ी में फंसी है, पानी बढ़ रहा है, उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो डर के मारे खत्म हो जाए या फिर आजा की आवाज को, अपनी विरासत की उस पूरी ताकत और दर्द को पूरी तरह अपना ले।
ये निर्णायक पल है, वो क्या चुनती है?
बहुत सोचने के बाद वो लड़ना छोड़ देती है, वो आजा से एक हो जाती है। वो अपनी रगों में अपनी माँ, अपनी नानी, अपनी उन सब पुरखों का गुस्सा, दुख, ताकत, उनका ज्ञान सब महसूस करती है। वो समझ जाती है कि आजा सिर्फ दर्द नहीं है, वो प्रतिरोध की कभी ना हारने वाली इच्छा भी है।
और जब तूफान थमता है
तो एनिस एक बदली हुई इंसान बनकर बाहर निकलती।
बदली हुई मतलब क्या वो आजाद हो जाती है शारीरिक रूप से?
नहीं, ऐसा कोई जादू नहीं होता कि उसकी जंजीरें टूट जाएं, लेकिन उसने एक गहरी अंदरूनी आजादी पाली है, आध्यात्मिक मुक्ति।
वो कैसे?
उसे ये एहसास होता है कि मालिक उसके जिस्म पर कब्जा कर सकते हैं, उसे अपना कह सकते हैं, लेकिन उसकी आत्मा पर, उसके अंदर जो आग जल रही है, उस पर उनका कोई हक नहीं है। तूफान के बीच उसने सीखा कि वो क्या चीज है जिसे वो छू नहीं सकते। वो आत्मा उसकी अपनी थी, और यही उसकी सच्ची आजादी थी, जो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं थी।
ये उपन्यास के सबसे जरूरी संदेशों में से है शायद।
आजादी का मतलब सिर्फ बाहरी बंधनों से छूटना नहीं है।
बिल्कुल।
अपनी आत्मा पर, अपनी पहचान पर, अपनी विरासत पर अपना हक जताना, ये भी आजादी है, और ये एहसास उसे नई ताकत देता होगा।
बहुत। तूफान के बाद वो भागकर उत्तर नहीं जाती जैसा ज्यादातर कहानियों में होता है।
अच्छा,
तो वो क्या करती है?
वो दक्षिण में ही रहती है, लेकिन अब अपनी शर्तों पर। वो दलदली इलाकों में छिपे मैरून समुदाय को ढूंढती है।
मैरून यानी वो भागे हुए गुलामों की बस्तियां?
हाँ, जो आजाद रहते थे। वो उनके साथ मिलकर प्रकृति के साथ एक नया जीवन शुरू करती है। वो अब सिर्फ माँ की विरासत ढोने वाली लड़की नहीं है, वो उस विरासत को जी रही है, एक ताकतवर औरत बन चुकी है।
एनिस की ये यात्रा वाकई कमाल है, और इसके जरिए वॉर्ड कितने गहरे मुद्दे उठाती हैं। सबसे पहले तो वही मातृवंशीय विरासत और पुरखों की याद।
जी।
एनिस का बचना, उसका लड़ना, सब कुछ माँ और डहोमी जड़ों से मिले ज्ञान पर टिका है। और आजा, वो जैसे उसी याद का जिंदा दहकता हुआ रूप है। ये दिखाता है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना, अपनी कहानियों को याद रखना कितना बड़ा हथियार है।
हाँ, और दूसरा वो आजादी वाला सवाल कि आजादी है क्या सिर्फ जंजीरों का टूटना, या अपने मन पर, अपनी आत्मा पर, अपनी कहानी पर काबू पाना। एनिस की यात्रा दिखाती है कि सच्ची आजादी अंदर से आती है, अपनी पहचान, अपने इतिहास को अपनाने से।
और प्रेम, माँ के लिए उसका प्यार, फिर सैफी के साथ वो गहरा रिश्ता, ये रिश्ते उस क्रूर दुनिया में बगावत बन जाते हैं।
सही कहा।
जहाँ रिश्ते तोड़ने की कोशिश होती है, वहाँ किसी से जुड़ना, प्यार करना, अपनी इंसानियत बचाने जैसा है।
बिल्कुल। और प्रकृति, प्रकृति भी एक किरदार की तरह है। वो गर्मी, वो खेत, दलदल, नदियाँ, सांप और वो तूफान, ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये कहानी में हिस्सा लेते हैं। एनिस के साथी भी हैं, दुश्मन भी। उसकी अंदरूनी हालत दिखाते हैं और उसकी किस्मत भी बदलते हैं। आध्यात्मिक और प्राकृतिक दुनिया जैसे एक हैं।
और आखिर में वो दांते का इन्फर्नो, वार्ड उस ढांचे को लेती हैं पर उसे नया मतलब देती हैं। एनिस का नीचे उतरना सिर्फ दुख नहीं है, ये खुद को खोजने, अपनी शक्ति वापस पाने का रास्ता है। वो नरक के अंधेरे में उतर कर ही अपनी विरासत की आग ढूंढती है। नरक यहां सजा की जगह नहीं बल्कि शुद्धिकरण और ज्ञान पाने की जगह बन जाता है। ये दांते से अलग एक अफ्रीकी नजरिए से नरक को देखना है।
जी, और इन सब गहरे विचारों को वार्ड अपनी खास शैली में बुनती हैं। पहली बात तो ये कि पूरी कहानी एनिस की आवाज में है, फर्स्ट पर्सन, तो हम सीधा उसके अनुभव से जुड़ जाते हैं। उसका डर, गुस्सा, उम्मीद, मुक्ति सब महसूस करते हैं।
और भाषा, क्या कमाल की भाषा है। बहुत काव्यात्मक, गीतात्मक, जैसे बाइबल की आयतें गूंज रही हों। और वो विवरण इतने सजीव हैं कि आप कैरोलिना की नमी, दास बाड़े की बू या लुइसियाना के खेतों की गर्मी लगभग महसूस कर सकते हैं।
हाँ, सुंदरता और क्रूरता साथ साथ चलती है उनकी कलम में, बिल्कुल एनिस की दुनिया की तरह। लगता है जैसे शब्दों में भी दर्द और उम्मीद लिपटे हुए हैं।
प्रतीक भी कितने शक्तिशाली हैं। पानी बार बार आता है, याद, यात्रा, पन्हा, सफाई, नैना जीवन, सबके प्रतीक के तौर पर। सांप डर भी जगाते हैं और ज्ञान और बदलाव के भी प्रतीक हैं। और तूफान, तबाही, सफाई, नया जन्म, ये प्रतीक कहानी को और गहरा बनाते हैं।
जी,
और दांते का जिक्र, वो एनिस के अकेले के दुख को दास्ता के उस बड़े सामूहिक अनुभव से जोड़ देता है। एक तरह का अमेरिकन इन्फर्नो रचता है, इतिहास के काले अध्याय को मिथक का दर्जा देता है।
इस उपन्यास को पढ़ना यकीनन आसान नहीं है, झिंझोड़ कर रख देता है। दास्ता की वो क्रूरता मन खराब हो सकता है, लेकिन जब किताब खत्म होती है तो सिर्फ दर्द याद नहीं रहता।
नहीं, जो चीज साथ रह जाती है वो है इंसान की हिम्मत, उसका लचीलापन। एनिस की यात्रा दिखाती है कि सबसे बुरे हालात में भी इंसान अपनी जड़ों, अपनी यादों, प्यार के सहारे न सिर्फ जिंदा रह सकता है बल्कि अपनी गरिमा, अपनी आजादी वापस पा सकता है।
हाँ, ये पाठक का नजरिया बदल देती है। दास्ता की कहानी सिर्फ दुख और भागने की कहानी नहीं रह जाती, ये एक आध्यात्मिक, एक पौराणिक महागाथा बन जाती है।
ये उन लाखों अनकही कहानियों को श्रद्धांजलि है, उन लोगों को जिन्होंने अकल्पनीय क्रूरता सही पर अपनी इंसानियत, अपनी पहचान, अपनी आत्मा की आग को बुझने नहीं दिया। जैस्मिन वार्ड ने उन्हें आवाज दी है और ये आवाज बहुत देर तक गूंजती है। तो अंत में ये कहानी हमें सिखाती है कि शायद सबसे घने अंधेरे में भी अपनी विरासत और प्रेम की ताकत से इंसान अपना रास्ता बना सकता है।
और ये कि सच्ची आजादी बाहरी बंधनों से ज्यादा अपने अंदर अपनी पहचान, अपने इतिहास और अपनी रूहानी ताकत को अपनाने में है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।